السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول ڈارک فیس۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش محمد اظہر، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ ون، چند باتیں۔ محترم قارئین، سلام مسنون، نیا ناول ڈارک فیس آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ موجودہ دور میں قیمتی سائنسی دھاتوں کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے دفاع کے میدان میں نئے نئے فارمولے اور ان پر مبنی ہتھیار تیار ہو رہے ہیں، ویسے ویسے ہی سائنسی ایجادات میں استعمال ہونے والی قیمتی اور نایاب دھاتوں کی طلب بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور اب قیمتی سائنسی دھاتوں کا حصول بین الاقوامی سطح پر باقاعدہ جرم کے زمرے میں شامل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ جرائم عام تنظیموں کے بس سے باہر ہے۔ ان جرائم میں ایسی تنظیمیں ملوث ہوتی ہیں جن کے نیٹ ورک وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی طاقتور اور باوسائل بھی ہوتی ہیں۔ ایسی ہی ایک بین الاقوامی تنظیم ڈارک فیس نے پاکیشیا سے انتہائی قیمتی سائنسی دھات پر جبرن قبضہ کرنے کا پلان بنایا، اور پھر یہ دھات اس نے حاصل بھی کر لی۔ لیکن جب پاکیشیا سیکرٹ سروس اس دھات کو واپس حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتری، تو پھر اس جد و جہد کا ہر لمحہ سرفروشی کا لمحہ بن گیا۔ زیر آب چٹانوں کے انتہائی خطرناک سمندر کے اندر واقع جزیروں پر اس قیمتی سائنسی دھات کے حصول کے لیے جو جدوجہد سامنے آئی، ایسی جدوجہد واقعی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران اور خصوصاً عمران کی خدا داد ذہانت، بے پناہ جذبے اور ناقابل شکست حوصلے سے ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ناول آپ کے اعلیٰ معیار پر ہر لحاظ سے پورا اترے گا۔ البتہ ناول پڑھنے سے پہلے اپنے چند خطوط اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے، کیونکہ دلچسپی کے لحاظ سے یہ بھی کسی طور کم نہیں ہے۔ بہاول پور سے پروفیسر اون محمد سعیدی لکھتے ہیں، میں بچپن سے ہی آپ کے ناولوں کا قاری ہوں، میں نے آپ کے ناولوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ البتہ آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ بعض مقامات پر ایسے واقعات کی عکاسی اور ڈائلوگ لکھ دیتے ہیں جن سے بہرحال سفلی جذبات رکھنے والوں کو تسکین ملتی ہے۔ امید ہے آپ اس طرف ضرور توجہ دیں گے۔ محترم پروفیسر اون محمد سعیدی صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے بڑے مختصر سے لفظوں میں ایک بہت بڑی شکایت لکھ دی ہے۔ اگر آپ کوئی مثال دے دیتے تو مجھے آپ کی بات سمجھنے میں دقت نہ ہوتی۔ میری تو ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میرے ناولوں میں ایسا کچھ پیش نہ کیا جائے جس سے سفلی جذبات کو تسکین ملے۔ میں تو ایسا لفظ لکھنے سے بھی گریز کرتا ہوں جو زو معنی ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ آئندہ تفصیل سے خط لکھیں گے۔ دیا گرام سے شاہد اقبال لکھتے ہیں، آپ کے ناول حقیقتاً بے حد دلچسپ ہوتے ہیں۔ البتہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ عمران نے اگر ایکسٹو کا راز انتہائی کامیابی سے ساری دنیا سے چھپا رکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، لیکن اس نے یہ راز آپ سے بھی چھپا لیا ہو۔ محترم شاہد اقبال صاحب، خط لکھنے اور ناول پڑھنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے واقعی دلچسپ بات لکھی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ خفیہ شادی سرے سے شادی ہی نہیں ہوتی، اور یہ بات تو عمران بھی جانتا ہے، اس لیے آپ کا یہ خدشہ یقیناً بے جا ہے۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ لالیہ سے خاور علی لکھتے ہیں، گزشتہ 2.5 سالوں سے آپ کے شاندار بلکہ جاندار ناولوں کا خاموش مداح ہوں. میرا نام بھی خاور ہے, اس لیے خاور میرا پسندیدہ کردار ہے. آپ نے جس طرح ناول پرنس شاما میں خاور کے کردار کو اجاگر کیا ہے, اس سے مجھے بے حد مسرت ہوئی ہے. امید ہے آپ آئندہ بھی خاور کی صلاحیتوں کو سامنے لاتے رہیں گے. محترم خاور علی صاحب, خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ. ہم نام ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پر آپ کی پسندیدگی کا جواز درست ہے. میں کوشش کروں گا کہ خاور کو زیادہ سے زیادہ کھل کر کام کرنے کا موقع ملتا رہے. امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے. فاضل پور ضلع راجن پور سے آصف نذیر لکھتے ہیں, آپ کے ناول بے حد شوق سے پڑھتا ہوں. آپ کا نام داغ ریز پڑھا عمران اور کرنل فریدی کا یہ مشترکہ ناول واقعی شاہکار ناول ہے. امید ہے آپ آئندہ بھی عمران اور کرنل فریدی کے مشترکہ ناول زیادہ سے زیادہ لکھیں گے. محترم آصف نذیر صاحب, خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی عمران اور کرنل فریدی کے مشترکہ ناول آپ پڑھتے رہیں گے اور امید ہے آپ آئندہ خط بھی لکھتے رہیں گے. سرگودا سے ہارون حیدر اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں, آپ کے ناول ہمیں بے حد پسند ہیں. البتہ اب آپ کے ناولوں میں فائٹنگ اور مزاح کا عنصر بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, امید ہے آپ اس پر توجہ دیں گے. محترم ہارون حیدر اور ساتھی صاحبان, خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ. آپ کی فرمائش سر آنکھوں پر. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کم سے کم شکایت کا موقع ملے. امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے. گڑھا موڑ ضلع وہاڑی سے طاہر لطیف لکھتے ہیں, آپ کی ہر کہانی دوسری کہانی سے مختلف ہوتی ہے اور یہ آپ کی بے پناہ ذہانت کی دلیل ہے. ٹائیگر عمران کا شاگرد ہے لیکن ابھی وہ اس سطح تک نہیں پہنچا کہ اسرائیل اور کافرستان کے حکام اس کے نام سے ہی خوف کھائیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اسے اس سطح پر لے آئیں. محترم طاہر لطیف صاحب, خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا شکریہ. ٹائیگر انشاءاللہ استاد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مقام تک ضرور پہنچے گا. آپ نے اپنے خط میں جس ویلفیئر ٹرسٹ کے تجویز پیش کی ہے اس پر غور کروں گا. بہرحال آپ کا خلوص اور دوسروں کی خدمت کا جذبہ واقعی قابل داد ہے. امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے. پنسرہ ضلع فیصل آباد سے فدا حسین لکھتے ہیں, طویل عرصے سے آپ کے ناولوں کا قاری ہوں. آپ کا ناول بزنس کرائم واقعی منفرد موضوع پر ایک شاندار ناول تھا. ایسا بہترین اور حقیقت سے قریب ناول لکھنے پر مبارکباد قبول فرمائیں. البتہ ایک خلش بھی ہے کہ عمران مجرموں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں برقی بھٹی میں ڈلوا کر جلوا دیتا ہے, حالانکہ یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. امید ہے آپ اس پر ضرور توجہ دیں گے. محترم فدا حسین صاحب, خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ. جہاں تک آپ کی خلیج کا تعلق ہے تو مجھے حیرت ہے کہ آپ کو مجرموں کی ہلاکت پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے, البتہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کی باقاعدہ تجہیز و تدفین ہو. تو محترم, جن حالات میں عمران و اس کے ساتھی گزر رہے ہوتے ہیں ان میں کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ صرف ان مجرموں یا دشمنوں کی لاشوں کو برقی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے جن کی پہچان لیے جانے سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو मिशन की तकमील में रुकावट पैदा हो सकती हो, इसलिए इस अंदाज में इन्हें गायब कर दिया जाता है, वरना आमतौर पर लाशें वैसे ही छोड़ दी जाती है। उम्मीद है अब वजाहत हो गई होगी और आप आइंदा भी खत लिखते रहेंगे। अब इजाजत दीजिए, वस्सलाम। मजर कलीम MA। इमरान नाश्ते से फारिग होकर अखबारात पढ़ने में मसरूफ था के पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। मन के मौसमी अली इमरान MSc DSc ऑक्शन बजबान खुद बल्कि बदहान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अखबार से नजरें हटाए बगैर रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा, ये मसमी, ये बदजबान, ये सब क्या कह रहे हो तुम? दूसरी तरफ से इमरान की अम्मा बी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा। अखबार इसके हाथ से नीचे गिर गया था। अम्मा बी, आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इमरान ने बड़े खुशू-खुजू से सलाम करते हुए कहा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, अल्लाह ताला गर्म हवा से भी बचाए तुम्हें। लेकिन ये तुमने मसमी का जूस क्यों पीना शुरू कर दिया है? क्या तुम्हारी जबान पर छाले हो गए हैं? ओह, मैं समझ गई, तुमने चाय ज्यादा पीनी शुरू कर दी थी। कहाँ है वो नामुराद सुलेमान? मैंने इसे कहा भी था कि तुम्हें चाय बनाकर ना दिया करे। कहाँ है वो? बुलाओ से। खुदा की पनाह, इस कदर चाय पीते हो कि जबान पर छाले हो गए हैं। अम्मा बी की गजबनाक आवाज सुनाई दी। अम्मा बी, मैं तो सिर्फ दूध पीता हूँ, और ये मसमी का मतलब वो नहीं जो आप समझ रही हैं। मसमी का मतलब होता है मैं, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। अब इसे क्या मालूम था कि सुबह सुबह अम्मा बी का फोन आ जाएगा। नहीं तो मुझसे छुपा रहे हो। वो है कहाँ सुलेमान? इसे बुलाओ। अम्मा बी की आवाज में गुस्से बस्तूर मौजूद था। वो मार्केट गया हुआ है दोपहर और रात के खाने का सामान खरीदने। अम्मा बी, मैं सच कह रहा हूँ, आप सुनाइए, आपकी तबीयत का क्या हाल है? कल सुरैया का फोन आया था, वो बड़ी खुशो-खुर्रम है। इमरान ने जानबूझकर अम्मा बी का जहन बदलने के लिए कहा, हाँ अल्लाह ताला की रहमत है, बेटियाँ अपने घर में खुश रहें तो अच्छा होता है। और हाँ सुनो, सुरैया ने मुझे कल फोन करके बताया है कि इसने तुम्हारे लिए जौहर आबाद के नवाब अहमद खान की बेटी का रिश्ता देखा है। इसने तुम्हें भी बताया होगा। अब तुम ऐसा करो कि मेरे साथ इनके घर चलो ताकि वो भी तुम्हें देख लें। अम्मा बी ने कहा। अम्मा बी, जौहर आबाद बहुत दूर है और वहाँ ना ट्रेन जाती है और ना हवाई जहाज, और कार में इतना लंबा सफर आपको थका देगा, इमरान ने जानबूझकर जान चुराने के अंदाज में कहा। लेकिन सुरैया इनसे बात कर चुकी है। अच्छा तुम खुद चले जाओ वहाँ, और सुनो, कोई ऐसी हरकत ना करना कि जिससे सुरैया की इसके ससुराल में बेइज्जती हो। बहनों की इज्जत का इनके ससुराल में खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। नवाब अहमद खान सुरैया के ससुराली अजीज हैं, अम्मा बी ने कहा। ठीक है अम्मा बी, मैं फुर्सत मिलते ही चला जाऊंगा, इमरान ने कहा। फुर्सत मिलते? क्या मतलब? क्या करते रहते हो तुम? क्या काम करते हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिलती? बोलो। अम्मा बी को एक बार फिर गुस्सा आने लग गया था। अम्मा बी, नेकी के काम करता रहता हूँ, और आप खुद ही तो कहती रहती हैं कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही असल नेकी है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। अब जाहिर है वो अम्मा बी को क्या बताता कि इसने फुर्सत का बहाना क्यों किया है। अच्छा करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारी नेकियां कबूल करे, लेकिन ये भी नेकी का काम है, समझे? इसलिए अभी और इसी वक्त रवाना हो जाओ। और सुनो, फिर कह रही हूँ कि वहाँ ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई बात ना करना जिससे सुरैया की इज्जत पर हरफ आए, वरना सुरैया ने मुझे शिकायत की तो जूतियां मारकर सर तोड़ दूंगी, समझे? आज ही रवाना हो जाओ। और फिर वापस आकर मुझे बताओ कि कैसे लोग हैं वो। अम्मा बी ने जलाली लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें अम्मा बी, मैं आज ही जाऊंगा, इमरान ने बादर नखास्ता रजामंदी का इजहार करते हुए कहा। अल्लाह ताला तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अम्मा बी ने दुआ देते हुए कहा और इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रखकर दोनों हाथों से सर पकड़ लिया, सुरैया की बच्ची ने किस अजाब में डाल दिया है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। वैसे कल सुरैया का फोन वाकई आया था और इसने भी यही बात की थी, लेकिन इमरान ने इसे तो टाल दिया था, लेकिन वो अब अम्मा बी को कैसे टालता, इसलिए मजबूरन इसे रजामंदी का इजहार करना पड़ा। ये भी गनीमत था कि अम्मा बी ने इसे साथ जाने का फैसला बदल दिया था, लेकिन अब दरमियान में मसला बन गया था सुरैया के ससुराली में इज्जत का, और इमरान अम्मा बी की फितरत को समझता था कि जरा सी बात भी हो गई तो अम्मा बी ने वाकई जूतियां मार मार कर इसका सर तोड़ देना है। इसलिए अब बैठा वो सोच रहा था कि इस मसले को हल कैसे किया जाए, लेकिन कोई तरकीब इसकी समझ में ना आ रही थी। इसी लम्हे फोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने इस बार बड़े मोहतात अंदाज में सिर्फ अपना नाम लेते हुए कहा, क्योंकि इसे खदशा था कि अम्मा बी ने दोबारा फोन ना कर दिया हो। सुरैया बोल रही हूँ भाईजान। दूसरी तरफ से सुरैया की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। अरे तुम, मैं बैठा सोच ही रहा था कि तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हारे सर पर अम्मा बी से जूते मरवाऊं। तुमने किस अजाब में डाल दिया है मुझे, इमरान ने कहा। अरे अरे भाईजान, क्या हुआ है, इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है आपको मुझ पर, अम्मा बी ने बताया है कि आप अकेले ही जा रहे हैं जौहराबाद और आज ही जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बता दूं कि नवाब अहमद खान मेरे शोहर वक्कार हयात के मामू हैं, इंतहाई रख रखाव के मालिक हैं, इसलिए आपने वहाँ कोई छिचोरी हरकत नहीं करनी भाईजान, और ना ही जोकरो जैसा लिबास पहनकर जाना है, वरना मेरी दो टके की इज्जत भी नहीं रह जाएगी ससुराल में, सुरैया ने मजे ले लेकर बात करते हुए कहा। वो चूंकि इमरान की छोटी बहन थी इसलिए इसे इमरान के मिजाज का बाखूबी इल्म था। वैसे तुम्हारी क्या इज्जत है ससुराल में, जो इज्जत तुम समझती हो वो सिर्फ मेरी वजह से है, वक्कार हयात को पता है कि तुम इमरान की बहन हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस इज्जत को कायम रहना चाहिए, मैंने नवाब अहमद खान के यहाँ फोन करके कह दिया है कि आप इनके यहाँ आ रहे हैं, सुरैया ने जवाब देते हुए कहा। तुमने मेरे बारे में क्या बताया है इन्हें, इमरान ने कहा। जो कुछ आप हैं, वैसे मैंने इन्हें बता दिया है कि आप नौकरी पसंद नहीं करते और इंतहाई सादगी से रहना पसंद करते हैं, इसलिए आप एक फ्लैट में रहते हैं। वैसे भाईजान एक बात बता दूं कि नवाब अहमद खान की इकलौती लड़की महजबी खुद भी ग्रेटलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ती रही है और बेहद खूबसूरत है, यकीनन आप इसे पसंद करेंगे। अच्छा, अल्लाह हाफिज, सुरैया ने कहा और इसके साथ ही रास्ता खत्म हो गया। तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, वो समझ गया था कि सुरैया ने क्यों यकलख्त रास्ता खत्म कर दिया है, क्योंकि इसे मालूम था कि इमरान इसे भी टालने की कोशिश करेगा। ये महजबी टाइप लड़कियां ना जाने कब मेरा पीछा छोड़ेंगी, इमरान ने उठते हुए कहा और फिर उठकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जाहिर है अब जौहराबाद तो जाना ही था। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो इसके जिस्म पर नीले रंग का सूट था। इसी लम्हे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी तो इमरान समझ गया कि सुलेमान वापस आ गया है। सुलेमान जल्दी आओ फौरन, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए ऊंची आवाज में कहा, क्या हुआ साहब? सुलेमान ने दरवाजे से दाखिल होते हुए कहा और इसके दोनों हाथों पर शॉपर थे। मैंने बर दिखावे के लिए जाना है, तुम कोई ऐसा गुर बताओ कि मैं बर दिखावे में फेल भी हो जाऊं और सुरैया की ससुराल में इज्जत भी कायम रहे। इमरान ने कहा तो सुलेमान बेख्तियार उछल पड़ा, एक ही कामयाब तरीन गुर है साहब, मैं ये शॉपर रखा हूँ फिर बताता हूँ, सुलेमान ने जवाब दिया और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। वाह, इसका मतलब है कि हुरेरे वाकई फायदेमंद होते हैं, इमरान ने कहा तो थोड़ी देर बाद सुलेमान वापस आ गया। हाँ अब बताइए क्या मसला है, सुलेमान ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। तो इमरान ने इसे सारी तफसील बता दी। मसला तो वाकई बेहद गंभीर है, सुरैया की इज्जत का मसला है, सुलेमान ने बड़े मौदबाना लहजे में कहा। तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कामयाब गुर है, वो क्या है? इमरान ने कहा, यही कि आप महजबी से शादी कर लें। बहरहाल आपने शादी तो करनी है, अगर सुरैया के ससुराली अजीजों में करेंगे तो सुरैया की इज्जत में इजाफा हो जाएगा, सुलेमान ने जवाब दिया। तो इमरान ने इस तरह मुंह बना लिया जैसे कोनेन का पूरा पैकेट इसके हलक में उतार दिया गया हो। तो ये था तुम्हारा कामयाब गुर, इसका मतलब है कि अब तुम्हारे हुरेरे बंद कर दिए जाएं, इमरान ने गुस्से लहजे में कहा। गुर तो मैंने अभी बताया ही नहीं, वैसे हुरेरों का इससे क्या ताल्लुक है? सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा, हुरेरे खाने के बावजूद अगर तुम्हारी अकल में कोई इजाफा नहीं हुआ तो इतने अखराजात आखिर क्यों किए जाएं? इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आपकी वजह से मुझे हुरेरा मकवी याददाश्त खाना पड़ता है, आप अगर साथ साथ मेरे वाजबात अदा करते रहें तो मुझे क्या जरूरत है हुरेरा मकवी याददाश्त खाने की, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे तुम वो गुर बता रहे थे, इमरान ने वाजवात का जिक्र आते ही फौरन मौजू बदलते हुए कहा, आपकी बजाय मैं चला जाता हूँ वहाँ बर दिखावे के लिए, इस तरह आपका काम भी हो जाएगा और सुरैया की इज्जत में भी इजाफा होगा, तो मैं तैयारी करूँ, सुलेमान ने कहा। यानी तुम्हारा मतलब है कि नवाब अहमद खान अपनी बेटी महजबी की शादी तुमसे करने पर तैयार हो जाएंगे, एक बात, और दूसरी बात ये कि इस तरह सुरैया की इज्जत में इजाफा होगा या कमी, क्यों? इमरान ने फिंकारते हुए कहा। जाहिर है इस तरह आपका भरम भी कायम रहेगा और इस भरम की वजह से सुरैया की इज्जत में भी इजाफा होगा कि जब इसके भाई का बावर्ची ऐसा है तो जाहिर है इसका भाई तो बहुत ऊंची शख्सियत होगी। अब ये दूसरी बात है कि आप क्या हैं और क्या नहीं, बहरहाल आपका भरम तो कायम रहेगा, सुलेमान ने जवाब दिया। और अम्मा बी का क्या होगा? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। बड़ी बेगम साहिबा भी जाहिर खुश होंगी, वो भी मुझे अपना बेटा ही समझती हैं। सुलेमान भला कहाँ पीछे रहने वाला था। ठीक है, पहले अम्मा बी को फोन करके इनसे इजाजत ले लूं, फिर बेशक चले जाना। चलो उठाओ फोन और करो बात, इमरान ने कहा। मैंने कह देता हूँ कि आप खुद जाने की बजाय मुझे जाने पर मजबूर कर रहे हैं, सुलेमान ने जवाब दिया। अरे अरे मैंने कब कहा है तुम जाओ, ख्वा मख्वा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, इमरान ने गुस्से से आंखें निकालते हुए कहा। अभी आपने खुद ही तो पूछा है, सुलेमान ने कहा। तो इमरान एक झटके से उठ खड़ा हुआ। अब ये मुझे ही भुगतना पड़ेगा, ना जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था, इमरान ने कहा। जाहिर है सुबह उठकर आदमी आईना ही देखता है, वैसे कहते हैं कि आदमी को सुबह सुबह किसी नेक आदमी का मुंह देखना चाहिए, इसलिए आप मेरी तस्वीर अपने बेडरूम में लगवा लें, सुलेमान ने कहा और तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। या अल्लाह, अब तू ही मेरा मुहाफिज है, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर ऑफिस टेबल के पीछे बैठे हुए एक अधेड़ उम्र आदमी ने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक नौजवान और खूबसूरत लड़की जिसने जीन्स और जैकेट पहनी हुई थी अंदर दाखिल हो रही थी। इसे देखकर अधेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंग गई। आओ मैगी, मैं तुम्हारा ही मुंतजर था, अधेड़ उम्र ने मुस्कुराते हुए कहा। आपने बड़ी इमरजेंसी कॉल की है बॉस, कोई खास बात हो गई है, मैगी ने बड़े लोचदार लहजे में कहा और मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गई। हाँ, एक छोटा सा लेकिन इंतहाई अहम मिशन है और मैंने इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है, अधेड़ उमर ने जवाब देते हुए कहा। थैंक्स गॉड, मैं तो फारिग रहकर अब बुरी तरह उकता चुकी थी, मैगी ने कहा तो अधेड़ उमर के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट रेंगने लगी। पाकिशिया कभी गई हो, बॉस ने कहा तो मैगी बेख्तियार चौंक पड़ी। यस बॉस, 4-5 मरतबा गई हूँ, पसमानदा सा मुल्क है, मैगी ने जवाब दिया। वहाँ की सेक्रेट सर्विस के बारे में भी तुम्हें मालूम होगा, बॉस ने कहा। हाँ, मैंने सुना हुआ है कि पाकिशिया की सेक्रेट सर्विस बेहद फाल मुनज़िम और खतरनाक सर्विस समझी जाती है, लेकिन आज तक इससे कभी वास्ता नहीं पड़ा, मैगी ने जवाब देते हुए कहा। इस बार मिशन पाकिशिया में है और तुमने इसे मुकम्मल करना है, लेकिन शर्त ये है कि पाकिशिया सेक्रेट सर्विस को इसकी इतला ना मिल सके, वरना मिशन तो एक तरफ, तुम भी वहाँ से जिंदा वापस ना आ सकोगी, बॉस ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मैगी आपकी तौकियात पर हर लिहाज से पूरा उतरेगी, मैगी ने बड़े बातमान लहजे में कहा। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम में बेपनाह सलाहियतें हैं, इसलिए तो मैंने इस मिशन के लिए पूरी टीम में से तुम्हारा इंतखाब किया है। वैसे ये शर्त इसलिए लगा रहा हूँ कि तुमने हत्ते अलवसा कोशिश करनी है कि पाकिस्तान सेक्रेट सर्विस को इस मिशन के बारे में इतला ना मिले, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाए तब भी बहरहाल मिशन तो मुकम्मल करना है। मुझे मालूम है कि ऐसा हो जाने की सूरत में भी तुम कामयाब रहोगी, बॉस ने कहा। ठीक है, आप कतई बेफिक्र रहें बॉस, आप मिशन बताएं बॉस, मैगी ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान दारुल हुकूमत से तकरीबन 800 किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा शहर है जिसे जौहर आबाद कहा जाता है और जौहर आबाद के करीब ही एक वसी इलाका है जहाँ घना जंगल है और जंगल के अंदर एक मकाम से इंतहाई कीमती तरीन धात का जखीरा मिलने की रिपोर्ट खलाई सैयारे के जरिए पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान के माहिरीन वहाँ इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। इस धात का साइंसी नाम कार्ड्स है। ये जदीद तरीन मिसाइल साजी की बुनियादी धात है और इंतहाई नायाब है। अभी वहाँ इस सिलसिले में सर्वे हो रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि यहाँ इस धात का कितना बड़ा जखीरा है। तुमने इस सर्वे की रिपोर्ट हासिल करनी है, बॉस ने कहा। फिर तो मुझे किसी खुसूसी मेकअप में वहाँ जाना होगा, वरना तो वहाँ किसी गैर मुल्की औरत को देखकर सब चौंक पड़ेंगे और मुझे वहाँ काम ही न करने दिया जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के लोग गैर मुल्की औरतों को इस तरह देखते हैं जैसे वो आसमानी मखलूक हो, और जौहर आबाद तो जाहिर है देहात होगा, मैगी ने कहा। मैंने इस सिलसिले में वहाँ खुसूसी तौर पर काम किया है ताकि तुम्हें वहाँ काम करने में आसानी हो सके। जौहर आबाद के लॉर्ड हैं नवाब अहमद खान। ये जंगल और इसका मुलहका इलाका भी इनकी मलकियत है। इनके बहुत से मैनेजर हैं, जिनमें से एक मैनेजर को मैंने खरीद लिया है। इस मैनेजर का नाम हाशिम है। वो खासा पढ़ा लिखा आदमी है और दारुल हुकूमत का रहने वाला है, लेकिन अब वो मुस्तकिल तौर पर जहरबाद में लॉर्ड के महल में रहता है। इसका एक चच्चा डेटलैंड में रहता है। इस चच्चा का नाम करामत हुसैन है। ये अपने बच्चों समेत डेटलैंड में तवील अरसे से सेटल हैं। हाशिम का रास्ता इसके चच्चा से रहता है। तुम डेटलैंड की नेशनल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हो और तुम पाकिस्तान के माहौल पर खुसूसी रिसर्च कर रही हो। ये नॉवेल डार्क फेस का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाएं।